हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणं भुजसव महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधस्वकर्णा युतमेश मे वर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनम् तं नमामि हरिपरम्। तस्मात् संकीर्तनं यस्य जगन्मङ्गलमोहसां महत् तामपि कौरव्य विद्धये कांतिक निष्कृतम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्त छोर प्रभु जय जय माखन छोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो जैसा कि हमने अब तक विदुर और मैत्रेय के विषय में पढ़ा और उनके मध्य जो वार्तालाप हुआ, विदुर जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुख का साधन क्या है और विश्वरूप के विषय में, भगवान की सृष्टि के विषय में, तो वैसे वैसे मैत्रेय ऋषि जो है उनका उत्तर देते जा रहे हैं। और अब विदुर जी कुछ और अन्य प्रश्न करेंगे इस चैप्टर में, तो हम उनको पढ़ेंगे और अपने हृदय में भगवान की भक्ति को उदय और प्रकट करने का एक साधन मानकर श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक भगवान की निकट आ सकें और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा प्रेम और विश्वास में वृद्धि हो सके। तो इस अध्याय में सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्य विदुर प्रत्यभाषत। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं एवं ब्रुवाणम, एवं मन इस प्रकार, ब्रुवाणम मन बोलते हुए मैत्रेय मुनि से, द्वैपायन सुता, द्वैपायन यानी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के पुत्र कौन है, वेदव्यास जी के पुत्र विदुर जी हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोल रहे ना, तो विदुर जी कौन है, बुद्ध बहुत विद्वान है। प्रियण प्रियणयन यानी अच्छे लगने वाले ढंग से, जो बुद्धिमान होते हैं ना, जब बात करते हैं तो पता चल जाता है कि कितना उसने अच्छे से बात किया। बेवकूफ और जो बुद्धिमान होता है ना, वो जब छुप करके बैठे होंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बुद्धिमान है, लेकिन जब से उसने मुंह खोला है ना, आपको पता चल जाएगा कि ये जाहिल है या फिर ये कितना बुद्धिमान है। तो जैसे यहाँ पर बताया कि क्योंकि विदुर जी बहुत बुद्धिमान है, इसलिए प्रीण निव यानी जब वो बोलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं। भारतीय भारतीय मतलब अनुरोध के रूप में वो बता रहे हैं ना उनको, परीक्षित महाराज को। विदुर ने प्रत्यभाषता ऐसे शब्द बोले यानी व्यक्त किया, ऐसे बोला। अनुवाद, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। और क्या पूछा है, बहुत ही सुंदर शब्दों में विदुर जी जो है वो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कहते हैं, विदुर उवाच, ब्रह्मन् कथं भगवत चिन्मात्रस्याकिवाणिना लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। ब्रह्मन् कथं भगवत चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं। शब्दार्थ देखिए, विदुर उवाच यानी विदुर ने कहा, ब्राह्मण हे ब्राह्मण किसको बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि को। कथम भगवत कथम मना कैसे, भगवत मना भगवान का, चिन्मात्रस्य यानी पूर्ण आध्यात्मिक का, तो भगवान तो पूर्ण आध्यात्मिक है, तो ऐसे भगवान का जो कि अविकारिण यानी अपवित्र परिवर्तित है, भगवान आध्यात्मिक है और उनमें कभी कोई विकार नहीं आता है, तो ऐसे भगवान जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, चिन्मात्र हैं और उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है, तो लीलया च अपनी लीलाओं से च अथवा अपि यानी यद्यपि ऐसा है, अगर वो अपनी लीला से ऐसा कर रहे हैं तो भी, युज्येरन यानी घटित होती है, निर्गुणस्य निर्गुण यानी वो जो भौतिक गुणों से रहित है, गुणा क्रिया प्रकृति के, गुणा मना प्रकृति के जो तीन गुण हैं, क्रिया मना कार्यकलाप। तो पूछते हैं, अनुवाद देखिए, हे विदुर विदुर श्री विदुर जी ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि है, सॉरी संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, यानी कि भगवान के अंदर क्या है, वो चिन्ह मात्र है और अविकार है, तो फिर वे प्रकृति के गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं। फिर जब ऐसे भगवान जो बिल्कुल चिन्ह मात्र हैं, जो कि अविकारी, उनके अंदर कभी कोई विकार नहीं आता, ना कभी उनके अंदर कोई चेंजिंग्स आती हैं, ऐसे भगवान आध्यात्मिक हैं, तो इनका इस प्रकृति के संबंध क्या है, इस प्रकृति के गुणों से उनके तथा उनके कार्यकलापों से उनका क्या संबंध है, और यदि ये उनकी लीला है, अगर आप ऐसे बोलते हो कि लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं, अगर लीला है तो उनके कार्यों के विषय में बताइए, और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, जब उनके अंदर गुण है ही नहीं, वो निर्गुण है,
तो फिर जब वो लीला करते हैं तो फिर उन गुणों को कैसे प्रदर्शित करते हैं? मतलब भगवान तो चकरा देने वाली चीज है, एक तो अविकारी है, गुणों से परे हैं, फिर भी इस संसार में गुणों से साथ उनका संबंध है, भौतिक प्रकृति के साथ उनका संबंध है, और अगर ये लीला है तो ये लीला करते कैसे हैं, तो अविकारी के कार्यकलाप किस तरह से घटित होते हैं, और अगर उनके अंदर गुण नहीं है, वो निर्गुण है, मतलब तीनों गुणों का उनके अंदर कोई समागम नहीं है, तो गुणों के बिना गुणों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, बता इनके विषय में कुछ थोड़ा बताओ ना डिटेल से। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर हमें समझाएंगे, श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है कि परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर है, यह है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये जो पहले संसार में किस तरह से ये भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है, विराट जगत उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, मतलब अलग अलग भगवान की किस तरह से शक्तियां प्रकट होती हैं और किस तरह से इस संसार में भगवान के कार्यकलाप उसके अंदर आते हैं। किंतु ये जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है, इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं। कि संसार जब उत्पन्न होता है तो भगवान के कार्यकलाप यानी भगवान ही अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, किंतु ये जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इस संसार में अगर जीव मोहग्रस्त हो जाते, क्योंकि इस जगत में गुण है ना, दैवी ही ऐसा गुणमयी माया है, गुण है, तो जो जीव भगवान के सनातन अंश हैं वो इस संसार में आकर मोहग्रस्त होते हैं, इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। ये माया जो है वो भगवान की दासी है, लेकिन जीव इस माया के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये शंका है ना, ये भ्रांत धारणाएं कि संसार में तो सब माया से प्रभावित होते हैं, तो जब भगवान भी संसार में आते हैं तो वो गलत कार्य करते हैं, भगवान चोरी करते हैं, गोपियों के साथ राज करते हैं, इतने सारे विवाह करते हैं, तो भगवान जो है ना वो संसार में आकर माया के कारण सामान्य जीवों की तरह माया से प्रभावित हो जाते हैं। तो लोगों की ये भ्रांत धारणा को दूर करने के लिए विदुर जी ने ये प्रश्न किया है कि भगवान तो आध्यात्मिक हैं और वो अविकारी हैं, फिर प्रकृति के गुणों से उनका संबंध क्या है, और अगर ये लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह से घटित होते हैं, यानी भगवान किस तरह से कार्य करते हैं उनके कार्यों के विषय में, और प्रकृति के गुणों के बिना भगवान किस तरह से अपने आप को अपने कार्य करते हैं, तो उसके विषय में विदुर जी इसलिए पूछ रहे हैं ताकि सामान्य लोगों की जो धारणा है कि संसार के लोग भी भगवान लोगों की तरह भगवान भी जो वो माया के अधीन हो जाते हैं, उसके विषय में क्लियर करने के लिए आगे श्री प्रभुपाद जी बोले, सामान्यतः यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों को के पद को एक स्तर तक मानते हैं। क्या मानते हैं वो बोलते हैं, संसार में जो लोग करते हैं वो गलत होता है, तो जो भगवान ने किया तो वो गलत क्यों नहीं है, भगवान ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो एक स्तर भी नहीं है ना भगवान। भगवान अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो, और संसार में कोई सामान्य जीव वो कार्य कर रहा है, तो एक स्तर भी नहीं है, वो भगवान है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, विदुर तो महर्षि मैत्रेय के उन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं, इसलिए इस श्लोक में भगवान को चिन्ह मात्र या पूर्णतः आध्यात्मिक बतलाया गया है। भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हों या स्थाई हों, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्ति है। अब भगवान कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, जरूर नहीं कि भगवान जो उत्पन्न करें वो मतलब इटर्नल ही हो। भगवान नश्वर माया को, संसार को, जीवों को उत्पन्न करते हैं, तो ये भगवान के अंदर असीम शक्ति है। चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होती है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और फिर पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है। अब संसार ये जो है उसके विषय में आप सब जानते हो। अभी ये संसार उत्पन्न होता है, फिर प्रलय होती है, तो विनष्ट हो जाता है, भगवान के अंदर लीन हो जाता है, फिर भगवान उसको अपनी शक्ति से पुनः निर्माण करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.19 में वर्णन हुआ है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म, बार बार संसार की सृष्टि और बार बार लय। किंतु उनकी अंतरंग शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर ना होकर नित्य है, और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। ये भौतिक जगत की क्या असलियत है कि नश्वर है, बार बार जन्म लेता है, बार बार समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, अंतरंग शक्ति, वो क्या है? नित्य है, इटर्नल है, और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। तो भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाते हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से, के प्रभाव से, यहाँ तक कि सत्तो गुण से भी मुक्त होती हैं। जो आध्यात्मिक जगत है उसमें तीनों गुण नहीं है, सत्तो गुण भी नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है, अतः अपरिवर्तनीय है। उसके अंदर कोई चेंजिंग तो गुणों के कारण आ रहा है ना संसार में, गुण नहीं हो तो चेंजिंग ही नहीं हो। तो ये भगवान और भगवान का जो लोक है वो अपरिवर्तनीय है, उसके अंदर चेंज नहीं आता। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु से कभी अधीन नहीं बनते हैं। तो भगवान क्योंकि स्वामी है तो इन गुणों के अधीन नहीं है, उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है? भगवान के जो धाम है वो उनके ऊपर इस माया का या गुणों का असर नहीं, तो भगवान के ऊपर कैसे कर सकता है ये माया असर? भगवान तो इस माया के स्वामी हैं। तो शिला प्रभुपाद जी अब एक यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी जादूगरी से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। इसी तरह भौतिक जगत, भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं की उद्भास है, किंतु उसी के साथ साथ शक्ति की या अभिव्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर से समझाया कि देखो, एक जादूगर होता है, अपनी जादू शक्ति से वो गाय बन गया समझो, या कबूतर बन गया, या कुछ भी बन गया, तो असल में तो वो गाय नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो गाय उससे अलग नहीं है क्योंकि वो खुद बना है। उसी तरह से भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं इस भौतिक जगत में, तो भगवान ये भौतिक जगत है नहीं, लेकिन फिर भी ये भौतिक जगत की भी भगवान का ही एक अंश है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, वो अलग नहीं है, क्योंकि ये उनके ही उद्भास है, किंतु उसी के साथ साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति भगवान नहीं है। असल में तो जादूगर कोई और है, उसने ऐसा स्वरूप धारण किया, उसी तरह से भगवान तो कृष्ण है, उसने आप बहिरंग शक्ति को प्रकट किया है। तो
इसीलिए यहाँ बताया श्री प्रभुपाद जी ने जो बहुत खास बात कि भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं हैं भले ही भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। भगवान का अपना अस्तित्व रियलिटी कभी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि भगवान इस संसार में बहिरंग शक्ति के माध्यम से प्रकट नहीं हुए हैं। भगवान ने बहिरंग शक्ति से जगत को रचा, लेकिन वे इस संसार में अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो उनकी जो अंतरंग शक्ति है, यानी उनका जो वास्तविक जो शक्ति है अंतरंग शक्ति, उस पर भौतिक प्रकृति के गुणों का कोई असर नहीं होता, ना वो कुलुषित होती है, ना परिवर्तित होती है, ना ही प्रभावित होने का कोई प्रश्न उठता है। तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सगुण हैं, किंतु साथ ही वे निर्गुण हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। ये एक लाइन में श्री प्रभुपाद जी ने कितनी इम्पोर्टेंट बात बता दी कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंग शक्ति है और एक बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सगुण हैं, मतलब भगवान का एक स्वरूप है, उस वो दिव्य है, अंतरंगा है, लेकिन उसके ऊपर जो है ये भौतिक गुण असर नहीं करते, किंतु साथ ही वे निर्गुण हैं। निर्गुण है मतलब भगवान का एक निर्गुण स्वरूप है, सगुण मतलब वो दिख रहे हैं लेकिन वो अंतरंगा शक्ति, निर्गुण मतलब इस संसार में वो कण कण में व्याप्त हैं क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सगुण है, भगवान का स्वरूप है, किंतु साथ ही वे निर्गुण हैं क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। निर्गुण मतलब तीनों गुण उन पर असर नहीं करते। अब वो कैसे है, उसको एक अच्छी सी सुंदर मिसाल के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए जाते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं भले ही वह अपने सदिच्छा से कारागार के द्वार कारागार का दौरा करें। अभी देखो, अगर कोई जेल होती है तो जेल में जो कैदी होते हैं ना, उनके ऊपर सारे जितने भी वहाँ के जो प्रतिबंध होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जो कठिनाई होती है, जो पनिशमेंट होती है, वो सब तो जेल के जो कैदी होते हैं ना उन पर लागू होती है। लेकिन अगर कभी राजा जो है वो उस संसार में आए, उस जेल के अंदर आए, कभी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा वो प्रभावित तो नहीं होगा, उसको तो वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना, भले ही वो अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करने के लिए आया है। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कारागार में मेरे लोग जो हैं, जितने भी कैदी हैं, वो किस तरह से हैं वगैरह, तो क्या वहाँ पर उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी? नहीं, उसको तो प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। तो वो बहुत ही सुंदर मिसाल है। देखो एक बार से फिर देखते हैं इसको कि कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए जाते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता भले ही वो अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। तो विष्णु पुराण में भगवान के षडेश्वरियों को उनसे अभिन्न बतलाया गया है, मतलब भगवान षडेश्वरियों से युक्त हैं, हमेशा उनके साथ होते हैं, दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य भगवान से अभिन्न हैं। जब इस जगत में ऐसे ऐश्वर्य का स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। भगवान दिव्य हैं,
तो भगवान चाहे संसार में किसी भी वस्तु का प्रदर्शन करते हैं अपनी किसी शक्ति का, तो उस पर गुणों का प्रभाव नहीं होता। गुणों के साथ इस संसार के तीनों गुणों से प्रकृति के साथ भगवान का संबंध नहीं है। चिन्ह मात्र शब्द इसी गारंटी है, इसकी गारंटी है कि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम की तुल्य हैं। अन्यथा सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकर्षित न होते। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो, भगवान की दिव्य कार्यकलाप जो हैं वो चिन्मयी हैं, वो कार्यकलाप दिव्य हैं। अगर दिव्य नहीं है तो ये, अगर भगवान के कार्यकलाप भी साधारण तरह से हो, तो साधारण अगर कोई बच्चा है वो चोरी कर रहा है या उसकी माता उसको दंड दे रही है या फिर वो अगर राज कर रहा है, तो वो ऐसे कार्यकलाप सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त के द्वारा आकर्षित होने के योग्य तो नहीं है। वो सुखदेव गोस्वामी जैसे आध्यात्मिक लोग इस समाधि की अवस्था में, वो सुखदेव गोस्वामी जो एक क्षण के लिए भी अपने माता के पिता के पास नहीं रहे, जो भगवान की माया से बचने के लिए 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे, वो भला इधर संसार में आकर क्या किसी संसारी पुरुष की हरकतों के बारे में वखान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं। तो विदुर ने पूछा कि भगवान के कार्यकलाप किस तरह से भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी अल्पज्ञ द्वारा गलत आकलन किया जाता है। तो जो अल्पज्ञ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो भगवान के कार्यों को समझ तो सकते नहीं, भगवान के कार्यों को समझना तो संभव ही नहीं। अब कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं कि हम सब हैरान हो जाते हैं, और मोहयंती यत सूर है, वो बड़े बड़े देवता भी हैरान हो जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ने ऐसा किया उसका कारण भले ही हमें समझ में ना आए, लेकिन इतना तो समझना ही है कि भगवान दिव्य हैं, भगवान के कार्यकलाप भी दिव्य हैं, भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम, बस इतना समझ लो कि मैं भौतिक नहीं हूँ, मेरा जन्म भौतिक नहीं है, मेरे कार्यकलाप भौतिक नहीं है, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं दिव्य हूँ, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है, बस इतना भी अगर तुम जान लोगे तो भी तुम त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सर्जुन, इस संसार को त्यागने के बाद, देह को त्यागने के बाद मुझे प्राप्त करो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक गुणों की नश्वरता भौतिक देह तथा आत्मा के मध्य अंतर के कारण है। मतलब जब आत्मा और देह में अंतर होगा तो ही भौतिक गुण उस पर अटैक करेंगे। तो लेकिन भगवान की आत्मा और देह नहीं है, भगवान पूरे के पूरे दिव्य हैं, इसलिए भौतिक गुण जो हैं उन पर असर नहीं करते। बद आत्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब ये आत्मा जो है जब शरीर के अंदर चली जाती है तो हमारी आत्मा कितनी है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर तो आत्मा है, और बाकी सारा का सारा क्या है हमारा, वो तो इन गुणों से बना हुआ, प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है। तो हमारी बद आत्मा होती है जब शरीर के अंदर बद हो जाती है, तो उसके सारे कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत प्रतीत होते हैं। किंतु भगवान का शरीर तथा स्वयं भगवान एक हैं, और जब भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भगवान तो पूरे के पूरे दिव्य हैं, उनके अंदर शरीर और आत्मा का भेद नहीं है, तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो सारे के सारे सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न हैं, वो उतने ही पवित्र हैं, उतने ही दिव्य हैं, चाहे भगवान चोरी करते हैं, चाहे भगवान रास करते हैं, चाहे भगवान 108 कन्याओं के साथ विवाह करते हैं, चाहे भगवान वृंदा का सतीत्व हरण करते हैं, कुछ भी करते हैं भगवान, भगवान के कार्यकलाप भौतिक नहीं हैं। भगवान जो हैं उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। ये अलग बात है कि हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अलग है, आत्मा अलग है, भौतिक गुणों का असर है, हमारी बुद्धि के ऊपर भी भौतिक गुणों की कलमश है। तो हम कभी कभी भगवान के कुछ कार्यों को समझ नहीं पाते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, भगवान ने कहा न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महेश्वर, ना मुझे देवता समझ सकते हैं और ना ही महर्षि लोग समझ सकते। तो भगवान को समझना नहीं है, बस इतना स्वीकार करना है कि भगवान तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम जो भी करते हो वो सब दिव्य है। कोई भगवान के प्रति कोई भी मन के अंदर संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करते ना मेरे अंदर वो विनाश हो जाता उनका, और नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना, जो मेरे ऊपर मेरे शास्त्रों के ऊपर मेरे कार्यकलापों के ऊपर संशय करते उनको ना इस संसार में सुख मिलेगा और ना ही आध्यात्मिक जगत में सुख मिलेगा। तो भले कभी कभी ऐसा हो कि भगवान के कार्यकलाप ना समझ में आए, लेकिन इतना तो समझना ही है कि भगवान के सारे कार्यकलाप भगवान से अभिन्न हैं, उन पर भौतिक गुणों का कोई असर नहीं होता, भगवान दिव्य हैं, भगवान के कार्य भी दिव्य हैं। और निष्कर्ष यह निकलता है कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रांत हैं, वो बेवकूफ हैं या फिर मोहग्रस्त हैं। अब इस चीज को मैत्रेय मुनि एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं। वे कहते हैं क्रीडायाम उद्यमोर्भस्य कामश्चि क्रीडिशान्यत स्वतस्तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चि क्रीडिशान्यत स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। क्रीडायाम, क्रीडायाम मतलब खेलने के मामले में, अभी बच्चे जो होते हैं ना वो जब खेलते हैं, उद्यम यानी उत्साह, अर्भस्य मतलब बालकों का, काम यानी इच्छा, और चिकीर्षिडया मतलब खेलने के लिए इच्छा। अब देखो बच्चे क्यों खेलते हैं, क्योंकि उनके मन में इच्छा होती है कि हम खेलेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। अभी वो बच्चे जो खेलने के लिए कोई भी गेम खेलते हैं तो वो क्यों खेल रहे हैं, ताकि वो सोचते हैं कि इसके बाद हमको आनंद मिलेगा। लेकिन अब आगे वाली बात बता रहे हैं कि स्वतस्तृप्तस्य कथम, स्वतस मना जो अपने आप में तृप्तस्य आत्मा तृप्त है, भगवान को कोई भी कार्य इसलिए नहीं करना पड़ता कि उसके द्वारा भगवान संतुष्ट होंगे या तृप्त होंगे या आनंदित होंगे। भगवान तो स्वतः तृप्तस्य हैं, स्वतः ही आनंदित हैं। च कथम, च मना भी, कथम मना किस लिए, निवृत्तस्य विरक्त सदान्यतः, सदा मना सदैव, अन्यता मना अन्यथा। अनुवाद देखिए, बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक होते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, इच्छा होती है कि हम ऐसा करें। किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती है, भगवान के अंदर तो कोई इच्छा होती ही नहीं है कि मैं ये करूं तो मैं तृप्त हो जाऊं, क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त होते हैं। तो निवृत्तस्य, भगवान विरक्त हैं, किसी भी वस्तु का आकर्षण उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो फिर भगवान तो स्वतृप्त हैं, स्वतः ही आनंदित हैं, तो उनके अंदर इच्छा नहीं होती है क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट हैं और हर एक वस्तु से विरक्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अद्वय मना कि वो एक ही हैं, उनके जैसा और कोई नहीं, तो अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। बाकी सब जो दो दिख रहा है वो सब नश्वर है। भगवान तो अद्वय है, मतलब जो कुछ भी है वही है, तो आप आनंदित किससे होना चाहते हो पता है? जो दूसरा हो, जैसे एक व्यक्ति अकेला बैठा हो, वो खुद से ही खुद से आनंदित नहीं होना चाहता, वो उसको आनंदित होने के लिए किसी और की चीज़ की वस्तु आवश्यकता होगी, लेकिन आप खुद ही हो और आप किसी और नहीं है, तो आप उससे आनंदित नहीं लोगे। लेकिन भगवान के अलावा तो और कुछ है ही नहीं ना, अद्वय है, तो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। वे अपनी शक्ति द्वारा स्वांशों तथा विभक्तांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार कर रहे हैं। जिस तरह अग्नि उष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है, अब अग्नि जो है उसी में से उष्मा निकलती है यानी गर्मी निकलती है, उसी में से प्रकाश यानी रोशनी निकलती है, तो अग्नि से निकले ना, तो संसार में जो कुछ भी निकल रहा है वो सब भगवान की शक्ति से, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब भगवान का ही है। तो चूंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व ही नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। मतलब जो कुछ भी आप दिख रहे हो, अगर भगवान उसके साथ कुछ है ना आनंद प्राप्त करता है, तो वो अपना ही भगवान, कोई दूसरी वस्तु से नहीं, वो भगवान अपने ही आपको एक्सपेंड कर रहे हैं और उन्हीं के साथ साहचर्य करते हैं, तो वो भगवान अपने ही साथ कर रहे हैं ना, कोई दूसरा तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक श्लोक बता रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में बताया, माया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषोवस्थिता। भगवान कहते हैं विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। जो भी संसार में माया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये सब संसार भगवान अपनी माया से प्रकट करते हैं। तो भगवान कहते हैं मस्तानि सर्वभूतानि, ये सब मुझ में है, जो कुछ भी है वो भगवान में है, लेकिन भगवान का एक अलग अस्तित्व है, भगवान के न चाहते स्वस्थित है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं, फिर भी वे उनमें नहीं हैं, यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी सबों से विरक्त हैं। संसार में दिख रहा है कि भगवान आसक्त हैं इनमें, लेकिन वो किसी और से थोड़ी ना, ये सब तो भगवान ही की शक्ति है। तो भगवान विरक्त हैं, मतलब किसी के प्रति और कोई वस्तु है ही नहीं जो भगवान को आकर्षित कर सके। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं कि जो पूरी संसार है वो भगवान ने तीन गुणों के द्वारा इस संसार को प्रकट किया है, इसकी सृष्टि की है, और फिर इन्हीं के द्वारा उस इस सृष्टि का वो पालन करते हैं और फिर अंत में इसका लय हो जाता है। मैत्री मुनि कहते अस्त्राक्षीत भगवान विश्वम गुणमाया मया तया संस्था पयत्येत भूय प्रत्यपि धास्यति। अस्त्राक्षीत भगवान विश्वम गुणमयात्ममायया तया संस्था पयत्येत भूय प्रत्यपि धास्यति। अस्त्राक्षीत, अस्त्राक्षीत मतलब उत्पन्न कराया, भगवान, भगवान ने विश्वम यानी इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे, गुणमय्या, गुण माने भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से समन्वित, इसे बोलते हैं दैव गुणमय्या, गुणमय्या गुणों के जो तीन गुण हैं उनके द्वारा भगवान ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। और आगे बोलते हैं आत्म माया मान अपनी माया शक्ति के द्वारा, ये भगवान की अपनी शक्ति है तीनों, ये बहिरंगा शक्ति जो तीनों गुणों से बनी हुई है। और उसके बाद तया संस्थापयत, तया माना उसके द्वारा, संस्थापयत ही मतलब पालन करते हैं, एतद माना यह सब, और फिर उसके बाद क्या होता है भूयः माना तब पुनः प्रत्यपिधास्यति, प्रत्यपदाय से मतलब उल्टे विलय भी करता है भगवान, ये प्रकट करता है तीनों गुणों के द्वारा, उसको पालन करता है और बाद में उसका विलय भी हो जाता है। अनुवाद देखिए, भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः उसका विलय भी करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान द्वारा इस विराट जगत की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की जो ये रचना है भगवान ने हमारे लिए की है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, नकल द्वारा प्रभुत्व जताना चाहते हैं, भगवान नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में भेज जाते हैं। हम सोचते हैं जैसे भगवान आनंद कर रहा है वैसे हम भी करें, तो भगवान बोलते हैं मेरे धाम में तो तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, चलो संसार में जाओ। और प्रकृति के तीनों गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। तो ये गुण क्या है, और भी मोह को बढ़ा देते हैं। कभी सत्वगुण अट्रैक्ट करता है, तो कभी रजोगुण, कभी तमोगुण और भी अट्रैक्ट हो जाता है। पता क्या चलता है कि नहीं खाना है ज़्यादा, रजोगुण वाले बोले खाओ खाओ मज़ा करो, और तमोगुण वाले यार सो जाओ क्या है संसार में। तो जो हमारी पहले से ही मोहित अवस्था है, बद्ध जीव द्वारा मोहित होकर ये जो प्रकृति के तीनों गुण जो हैं वो मोह को और भी बढ़ाते हैं, और बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है। फिर पूरा भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो फिर उसकी इच्छा को पूरा करने तो भगवान ने ये संसार में पहले ही जीव आत्मा है, और आत्मा को तो ये संसार भौतिक जगत का आकर्षण होना ही चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी आत्मा क्योंकि तटस्थ शक्ति है और उसके अंदर में थोड़ा सा जो हवस है संसार को भोगने की, भगवान तीनों गुणों के द्वारा इसको इतना मोह में डाल देते हैं कि उसको वो बिल्कुल से भूल जाता है कि मेरी वास्तविक पहचान तो भगवान का अंश होना है। तो वो अपने आप को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानने लगता है, ताकि भगवान उसको मौका देते हैं। अगर उसको याद रहेगा तो वो उसको संसार में आकर्षण आएगा ही नहीं ना, तो पूरा अपनी हवस यहाँ संसार में ख़त्म कर दें, और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। करते 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 भगवान ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान चाहते ही नहीं कि वो आए, लेकिन भगवान चाहते हैं उसके हृदय की हवस खत्म हो जाए और उसे ये रियलाइज़ हो जाए कि संसार में चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें, चाहे कितना भी आनंदित होने की इच्छा कर लें, कहीं आनंद नहीं आएगा भगवान के नाम के द्वारा। तो भगवान ऐसा करते हैं कि बद्ध जी माया के द्वारा मोहग्रस्त होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भूल कर भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है, और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। यह भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्ध आत्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रित बनना चाहते हैं। इस तरह बद्ध आत्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है। तो ये भौतिक जगत भगवान के आनंद लेने के लिए नहीं, कोई लोग बोलते भगवान आता है संसार में, भगवान तो इस संसार को बनाता है भौतिक जगत के भौतिक लोगों को की दुर्वासना जो उनका इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए भगवान ने बनाया है, और फिर भी भगवान की कितनी करुणा है, कितनी कृपा है। ये भौतिक जगत भगवान के रहने के लायक है बताओ? भगवान अपने आध्यात्मिक धाम में रहते हैं जहाँ पर करोड़ों करोड़ों आत्माएं भगवान की सेवा करती हैं। आध्यात्मिक जगत में तो कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? क्या ज़रूरत है कृष्ण को इस संसार में आने की? केवल भगवान जानते हैं कि भौतिक जगत में जो जीव गिर गया है इसे कुछ तो ऐसा मिले जो मेरी तरफ उसको आकर्षण हो, कुछ तो मेरी लीलाओं को सुनेगा, मेरे विषय में बोलेगा। मेरे अगर आप सोचो कि भगवान ने जन्म नहीं लिया होता, कोई भी अवतार नहीं लिया होता, तो हम क्या सुनकर भगवान की ओर आकर्षित हो गए? अगर भगवान किसी विग्रह स्वरूप में नहीं आए होते तो हम क्या कभी कभी हम ऐसा इमेजिन कर सकते कि भगवान कैसे लगते होंगे, भगवान कितने सुंदर होंगे, उनके नेत्र कितने सुंदर हैं, भगवान के अधर कितने सुंदर हैं, भगवान किस तरह से खड़े होते हैं। वो तो भगवान सामने खड़े गोपीनाथ की तरह तो हमको दिख रहा है, तो वो ये आकर्षण, ये भगवान कितनी अनुकंपा है कि कभी विग्रह के रूप में, कभी नाम के रूप में, कभी शास्त्र के रूप में, और स्वयं बार बार अवतार लेते हैं ताकि जीवों को ये अपने विषय में याद दिलाना चाहते हैं कि मैं हूँ वास्तविक तुम्हारा लक्ष्य, मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। और इस संसार में जो जीव बहुत बहुत जन्मों से दुखी होते जाते हैं, उनको ये अवसर मिलता है कि हाँ कुछ तो ऐसा है जिसे पाकर मुझे आनंद होगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अभी तो उन बदात्माओं के लिए जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। हमने भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे दी कि आपको किधर जाना है, अंतरंग शक्ति में आकर मेरी सेवा करनी है या बहिरंग शक्ति में जाकर प्रभुत्व जताना है, तो इसका दुरुपयोग करके हमने बोला यार तुम्हारी सेवा करके क्या आनंद आएगा, हम भौतिक जगत में जाते हैं आनंद लेते हैं। तो भगवान ने पूरा अवसर दिया है। इस तरह बद आत्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है, लेकिन भगवान अपनी करुणा के द्वारा जीव आत्मा को यह रियलाइज करवाते रहते हैं कि भौतिक जगत तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, एवं प्राप्य भजस्व मां। और ये भगवान ने तो ये भौतिक जगत बनाकर इसमें तीन गुणों की माया का चक्कर डाल भी दिया, लेकिन फिर भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं और वो हमें बताते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी इनके द्वारा, ऐसे शुद्ध वैष्णवों के द्वारा हमें पता चलता है वो अपने विषय में नहीं सोचते, वो अपने स्वास्थ्य के विषय में, अपने कंफर्ट के विषय में नहीं सोचते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बद्ध जीव जो भौतिक प्रकृति के चुंगल में इतना बुरी तरह से फंस गया है, इतना मोहग्रस्त हो गया है कि उसे याद ही नहीं है कि वो भगवान का अंश है, वो अपने आप को भौतिक प्रकृति का अंश समझ रहा है। तो उसको ये बताऊं जाकर कि नहीं, तुम भगवान के हो, तुम्हें भगवान के साथ मिलकर आनंद आएगा, तुम इसीलिए दुखी हो क्योंकि भगवान से दूर हो। तो बार बार ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त संसार में आते हैं और अपनी चेष्टाओं से, अपने प्रचार से, अपनी भक्ति के द्वारा जीवों को भगवान की ओर मोड़ने का, भगवान की भक्ति करने का संदेश भगवान का देते हैं ताकि उनका ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।